प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। धन्यम धन का साधन, जसस्यम जस का स्रोत, आयुष्यम दीर्घ जीवन का स्रोत, स्वर्गम स्वर्ग जाने का साधन, कलि कलि युग में मलापहम कलमस को घटाने वाला, धर्म धर्म अर्थ आर्थिक विकास, काम इंद्र तृप्ति, मोक्षनाम मोक्ष का, सम्यक पूर्णतया, सिद्धिम सिद्धि, अभिप्सुभि इच्छुकों के द्वारा, श्रद्धया अत्यंत श्रद्धा से, एतत् यह चरित्र, अनुश्राव्यम सुना जाना चाहिए, चतुर्नाम चारो कारणम कारणों का, परम चरम। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है। अपने जीवन अवधि आयु को बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कलिकाल के कलमशों का नाश कर सकता है। साथ ही वो धर्म अर्थ काम तथा मोक्षों के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं, ये पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़े तथा सुने। कोई भी श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, कोई भी पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांत को पढ़कर तथा सुनकर स्वाभाविक तौर पर भक्त बन जाता है। और जो ही ओ भक्त बन जाता है, उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परम। यदि मनुष्य भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, या शुद्ध अकाम भक्त बनना चाहता है, या कुछ भौतिक संपत्ति चाहता है, सकाम या सर्वकाम, या फिर परब्रह्म के तेज में लीन होना चाहता है अर्थात मोक्ष काम, तो उसे भक्ति योग साधने तथा भगवान विष्णु या उनके भक्तों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने की सलाह दी जाती है। वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है, वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यम्। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों को समझना है। जब भी हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, हम उनके भक्तों की भी बात करते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं है, ये कभी भी निर्विशेष या शून्य नहीं है। कृष्ण विशेष से पूर्ण सविशेष है, और जब ही कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो शून्य के लिए स्थान ही नहीं रह जाता, शून्य के लिए स्थान ही नहीं रह पाता। यही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप पदामयम् ददाति सर्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादन सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो यम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्त्विकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यं जसस्य मायुष्यं स्वर्गं कलिमलापहं धर्मार्थकाममोक्षानां सम्यक् सिद्धिमभीप्सुभिः श्रद्धयैतत् अनुसाग्रं चतुर्णां कारणं परम् श्रीमद्भागवतम् एक दिव्य ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद एवं द्वितीय स्कंद ये भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल है। द्वादश अंग द्वादश स्कंद है। श्रीमद् भगवान के द्वादश अंग श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंद है। प्रथम एवं द्वितीय स्कंद जो है ये भगवान के श्री चरण कमल है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद ये जंघादय है। पंचम स्कंद नाभि है। षष्ठ स्कंद वक्षस्थल सप्तम अष्टम बाहुदय नवम कंठ दशम मुखमंडल एकादश ललाट द्वादश मस्तक यह है श्रीमद् भागवतम का स्वरूप। तो श्रीमद् भागवतम इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन नहीं है। ये धर्म प्रच्छित कैतव धर्म अर्थ कैतव प्रज्जित इसको उखाड़ के फेंका गया कि शुद्ध भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवत में चर्चा की गई है। तो श्रीमद् भागवत में एक दिव्य ग्रंथ है जिसको श्रवण करने से पठन करने से मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण हो सकता है कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत में श्रवण करने से पांच प्रकार का फल होता है। पहले है श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में सप्तम अध्याय दो नंबर श्लोक जो श्रीनवतम अपैति अर्धिर वित्रिष्णा जो श्रीनवतम अपैति अर्धिर वित्रिष्णा एक है जो हमारे शास्त्र ग्रंथ अध्ययन में रुचि नहीं है उसमें रुचि पैदा कर देते हैं एक नंबर। दो नंबर है जो विषय में तृष्णा बनी हुई है एक तृष्णा को मिटा देते वित्रिष्णा कर देते नहीं मुझे संसार नहीं चाहिए। जस श्रीनवतम अपैत अरुति वित्रिष्णा और तीसरा है सप्तम च शुद्धेत उचिरे नपुंस अंतकरण जो कलमस है मल है इसको निर्मल बना देते हैं। सप्तम अंतकरण अंतकरण हृदय हृदय को निर्मल बना देते हैं। एक पाठ श्रीमद भागवतम पाठ करने से पांच प्रकार का फल। जब परीक्षित महाराज श्री सुखदेव के समय कहे पूरा हो गया कथा और सुनने की क्या आवश्यकता है, नहीं प्रभु सुनने से पांच प्रकार का फल है। वहां श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो हमारा जो संसार में रुचि है ये रुचि को मिटा दे, संसार नहीं चाहते, संसार में वितृष्णा हो जाते हैं, और जो अरुति रोती नहीं है, शास्त्र ग्रंथ पढ़ने में रुचि रोती नहीं है, इसको रोती जो रोती है रोती बना देते, अरोती को रोती कर देते हैं, पढ़ने में पढ़ना चाहते हैं। जो सिन्वतम अवैध अरोति वृतृष्णा, जो जो पढ़ना नहीं चाहते उसको पढ़ने में मन लगता है, जो संसार में तृष्णा है और तृष्णा को मिटा देता है। और सत्तम च शुद्धे उचिरे न पुंस, अंतकरण को निर्मल बना देता है। और चौथा है भक्तिर हरो, भगवान में प्रेम होता है, भक्तिर हरो, हरो भक्ति, श्याम सुंदर में प्रेम होता है, भक्तिर हरो तत् पुरुषे च सक्षम, भगवान के भक्त में सुख होता है, नहीं मुझे भगवान के भक्त प्यारे लगने लगता है। भक्तिर हरो तत् पुरुषे च सक्षम बदम मन्यसे चेत, हारम बदम मन्यसे, जैसे हार में बहुत सारी पुष्पों का गुथी हुई है, जैसे एक पुष्प के बाद एक पुष्प है, इसी प्रकार अब एक लीलाओं के बाद एक लीला लीला मुझे सुनाते रहिए, अब बंद मत करिए। हारम बद मन्यसे चेत, हारम का टीकाकारों ने लिखा जिसे हार में बहुत सारी मोतियों का गुथन होता है, बहुत सारी मोती बहुत सारी फूल है, जिसे एक लीला के बाद और एक लीला आप सुनाते रहिए। हारम बद मन्यसे चेत, यदि आप मानते हैं, इसलिए श्रीमद भागवतम नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करना चाहिए, विशेष लाभ है। और आज का जो प्रसंग है श्रील परीक्षित श्रील तीर्थ महाराज के चरित्र, इसमें विशेष आकर्षण दिखाएंगे। ये पढ़ने से तुम्हारा ये लाभ मिलेगा, धन्यम जसस्यम आयुष्यम सर्गम कलिमलापहम, ये सब लाभ है कि धन मिलेगा, जस मिलेगा, आयु आयु का वर्धन होगा, और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और कलिमलापहम, कलि का जो दोष है कलमस है, एक कलमस नष्ट हो जाएगा। धर्मार्थ काम मोक्षानाम, जो धर्म चाहते अर्थ चाहते काम चाहते मोक्ष को चाहते वो भी पूरी हो जाती है। तो क्यों नहीं इसको पढ़े, सम्यक सिद्धि मविप्सुधि, जो चाहते वो सब आपको मिल जाएगा। एक शर्त रखा गया, श्रद्धा एतत् अनुसार्गम, श्रद्धा से श्रवण करें, श्रद्धा एतत् अनुसार्गम। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्लोक आया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परसं जतेन्द्रिय, श्रद्धावान और संजत दोनों दोनों शर्त रखा गया, श्रद्धावान होना पड़े किसी भी सेवा में, सब किसी भी कार्य में, जागतिक या पारमार्थिक, अगर सफलता अगर पानी है तो उसमें श्रद्धा चाहिए, विश्वास है, नहीं हरिनाम सर्वोपरि, सर्वोपरि भजन है हरिनाम, इसको आदर के साथ करना चाहिए, इसको नहीं कि सारा दिन भर जैसे कोई आदर नहीं है। जैसे छटीगढ़ रोड में ऐसे घटना घटी कि 10 लोगों का मौत हो गया, 10 लोगों का शरीर पूरा हो गया, आपको सुनकर कुछ मन में असर नहीं पड़ेगा, क्या हुआ 10 चला गया। जब आप सुनेंगे कि हमारे कोई रिश्तेदार वहां उसमें है तो आपको एक विशेष दुख होगा, नहीं विशेष, जैसे हम लोग कथा श्रवण करते हैं इसमें श्रद्धा नहीं होती है, क्योंकि परम पुरुष श्री कृष्ण संबंध नहीं है। जब हम समझेंगे श्याम सुंदर हमारे एकमात्र संबंध है तब आप उसके जस सुनने के लिए लालसा रहेगी, नहीं प्रभु की जस है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु श्याम सुंदर की जस गाई जाते हैं, इसको मुझे सुनना है। तो इसीलिए कम से कम संबंध बनाना चाहिए कि नहीं हरि नाम जैसे नाम है और प्रभु है, तो नाम साधन को पकड़े, मतलब नाम को ग्रहण करे। श्याम सुंदर भाले पास में रहे, उसको अगर स्वीकार ना भी करे, उसको मान ले, किंतु ने साधन अगर अगर पकड़ ले, साधन को स्वीकार कर ले, तो साधन अपना आप आपके पीछे पीछे घूमेगा। जैसे बाछड़ा और गाया, गाया को ले जाने की आवश्यकता नहीं, बाछड़ा का ले जाइए, गाया अपने आप साथ साथ में चलेगा। इसी प्रकार नाम साधन को आप साथ रखिए, प्रभु साथ साथ में आपके चलेंगे। हाँ, इसलिए प्रभु से प्रभु का नाम बहुत बड़ा है। जैसे एक नदी में नाविक जो एक करते हैं, पार लोग पारा पार करते हैं, लोग पार मतलब जैसे नाव में हाँ पार करते हैं, तो जो राजा का नाम लेता था उसको पार कर देता था। नाविक ने जो राजा का नाम लेता था, तो नाविक किसी अब पूछता नहीं कि पैसा दो कुछ दो, नहीं, राजा का नाम लिया मतलब उसको नदी पार कर दिया, पार कर देते। एक दिन राजा स्वयं आए कि देखिए मेरा नाम का कितना प्रभाव है, चलो आज मैं स्वयं जाता हूं। नाविक को बुलाया, नाविक आओ। तो नाविक ने क्या जवाब दिया, सर आप 10 रुपए लेकर आए तब आपको पार करेंगे। स्वयं आया राजा, स्वयं आया कि मुझे वो जानते थे कि मेरा नाम का इतना प्रभाव है, सभी लोग को पार कर देते, तो स्वयं आए। और नाविक ने क्या जवाब दिया, 10 रुपए लाए तब मैं आपको नदी पार करूंगा। तो राजा, तो एक और नाविक ने कहा कि स्वयं राजा है, हाँ, तो चरण में गिरा। कहने का उद्देश्य है कि नाम, नामे से नाम बड़ा है, प्रभु से प्रभु का नाम बड़ा है। इसलिए साधन जब हम अच्छा से करेंगे, साध्य अपना प्राप्त, साध्य के लिए चिंतन नहीं करना, साध्य अपना आप पीछे पीछे घूमेंगे। जब आप साधन ठीक से करेंगे, साध्य अपना आप साथ में चलेंगे। इसमें क्या परेशानी है जानते, जैसे नदी में पानी बहता है, नदी में पानी बहता है और उसमें टन टन पानी ऊपर से चला जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कष्ट होता है, कुछ कष्ट नहीं होता है। जब उसी पानी को एक बकेट पानी की दो बकेट पानी सिर पर रखेंगे, सिर दर्द करने लगेगा, करेगा हाँ, कारण कि अब पानी को अपने सिर पर लिया। इसी प्रकार संसार में ये अमित्व बोध, ये मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये जो मेरा 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 करते करते इस बोझ को अपने सिर पर ले लिया, जब ये छूट जाता है तब बहुत दुख होता है। इसलिए नहीं, प्रभु के संसार में इसको बहा दीजिए, मेरा कुछ नहीं है, प्रभु का ही है, जस्ट मैं इसका टेक केयर कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं, ये भावना रखनी चाहिए। ये भावना कब आती है, जब भजन ठीक से चलेगा। भजन नहीं करेंगे तो हमेशा आप दुख से झेलते रहेंगे, कष्ट उनको सताते रहेगा। इसलिए प्रभु का नाम निरंतर जिहा पर रहे। सज्जन महाप्रभु कहे कि जब जब जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए, पूरी जाते थे, तो 4-5 महीना प्रभु के साथ रहते थे। जब प्रभु कहते कि जाओ अभी बंगाल लौट कर जाओ, कोई आना नहीं चाहते थे कि परम प्रियतम गौर सुंदर के साथ छोड़ के कैसे जाओ, कोई आना नहीं चाहते थे। महाप्रभु कहते नहीं जाओ, 4-5 महीना हो गया, अभी मेरे पास नहीं रहो, अभी वापस लौट कर जाओ। तो भक्त लोग रोते, महाप्रभु शिक्षा देते कि घर में जाकर निरंतर कृष्ण नाम करो, वैष्णव का सेवा करो। हाँ, इस प्रकार महाप्रभु आदेश करते थे। तो कहने का उद्देश्य ये है, जो पृथ्वी महाराज चरित्र हम लोग सुनते हैं, जो पृथ्वी महाराज चरित्र में ये शिक्षा मिलती है कि इस प्रकार एक मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए उनके जीवन में सब कुछ है, वो गृहस्थ भी बने, राज्य सुख भी, सुख भोग भी करे, उसके बाद वैराग्य बाण प्रस्त्र भी स्वीकार किए, फिर उसके बाद प्रभु का भजन भी किए, संत महापुरुष से आदेश भी प्राप्त किए करे। तो इस प्रकार से एक गृहस्थ जीवन को कैसे चालना करना है, इससे पूरी शिक्षा मिलती है। इस कर्ण में, इस चौथा स्कंद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग का इसमें वर्णन है। जैसे पहला जो सप्तम अध्याय है, सात अध्याय, इसमें धर्म का वर्णन है। जो दक्ष प्रजापति और दक्ष प्रजापति की जो कहानी है, शिव और दक्ष का, तो इसमें धर्म का वर्णन है सप्तम अध्याय में। फिर अष्टम से लेकर द्वादश अध्याय तक अर्थ का वर्णन है। अर्थम, ध्रुव महाराज अर्थ प्राप्ति के लिए वन में गए थे, धर्म अर्थ। यह काम का परिभाषा, माने काम का चरितार्थ कैसे किया जाए, काम को प्राप्त करने के लिए पृथु महाराज चरित्र है। एकादश से ले त्रयोदश से लेकर तेईस अध्याय तक एकादश अध्यायों में, फिर आखिरी 24 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक मोक्ष का वर्णन करेगा श्रील सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने मैत्रेय मुनि, जब प्रतितस का जो वैराग्य आखिरी में आएगा मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग का वर्णन इस श्रीमद् भागवत, और पहला स्कंद जो वर्णन है ये सुखदेव सुत गोस्वामी ने वर्णन किया। हमें सब जो कोट है सुत उवाचा, दूसरा स्कंद जो है सुखदेव गोस्वामी ने उसका उद्गार है, तीसरा और चौथा जो स्कंद है ये मैत्र मणि का प्रवचन अधिक है, पंचम षष्ठ जो स्कंद है ये सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन है, सप्तम जो स्कंद है ये नारद मुनि का प्रवचन है युधिष्ठिर के पति, अष्टम नवम दशम फिर सुखदेव गोस्वामी प्रवचन, एकादश स्कंद जो है बहुत दिव्य स्कंद है, उसको बार बार पढ़े, उसमें बहुत शिक्षा है, वो भगवान का प्रवचन है। कोई गीता पढ़कर फिर एकादश स्कंद पढ़े तो गीता पूरी उसको शिक्षा होती है, गीता का पूरा नॉलेज आ जाता है। एकादश स्कंद नहीं पढ़ने से उसका अधूरा रह जाएगा, कुछ बात वहां जाकर खोला। एकादश स्कंद है भगवान का प्रवचन, और द्वादश स्कंद जो है फिर सुत गोस्वामी उपसंहार कर रहे हैं। नहीं, इस तरह श्रीमद् भागवत इसलिए इतना महान है, द्वादश अध्याय में वर्णन है। तो यहां देखिए कुछ लोभ दिखाया गया, धन्यम जसस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलि मलापहम, तुम पृथ्वी चरित्र को पढ़ो तुमको ये सब मिलेगा, धन मिलेगा, जस मिलेगा, आयु वर्धन होगा। तो इस प्रकार से धन्यम जसस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमलापहम, धर्मार्थ काम जो भी चाहे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्मार्थ काम मोक्षणम सम्यक सिद्धिम, सम्यक परिपूर्ण रूप से सिद्धिम अभिप्सुधि, जो चाहो सब मिल जाएगा। श्रद्धा एतद् अनुश्रावणम, एक शब्द लिया श्रद्धया, अनुश्रावणम बार बार श्रवण करो, हाँ श्रद्धा से अनुश्रावणम चतुर्णम कारणम परम। तो श्रद्धा से देखिए श्रद्धा कितने बल होता है, श्रद्धा यदि किसी में श्रद्धा है तो ठाकुर जी सक्षम प्रकट हो जाते हैं। एक बार एक ब्राह्मण मेरे जो घटना में सुना था बरसाना में परम पूज्य रमेश सम्मुख से, बहुत सुंदर एक दिव्य संत है, हाँ बहुत वास्तविक एक विरक्त संत है। तो सुना रहे थे कि एक ब्राह्मण नए शादी करके जा रहे थे, बिल्कुल नए, तो बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो जाते जाते कुछ दुष्ट लोग देखे, ब्राह्मण सुंदर पत्नी के लेके जा रहे हैं, तो उसके साथ धन भी है, बहुत सारी संपत्ति भी है बैलगाड़ी पर, तो उसको लेना चाह रहे। वो लोग साधु वेश धारण कर ले, चार पांच दोस्तों ने साधु वेश ले लिया कि साधु पर सबको विश्वास होता है, तो ले लिया और कहे कि, तो कुछ दूर जाने के बाद दिख भ्रम हो गया ब्राह्मण का, किस दिशा में चले रास्ता निर्णय नहीं कर पा रहा था। तो दुष्ट ने देखा जो ब्राह्मण पत्नी लेके जा रहे हैं इसका कुछ दिशा में भ्रम है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपको ठीक दिशा से पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, तो ब्राह्मण का विश्वास नहीं हो रहा था। तो बहुत समय बातचीत करने के बाद वो ब्राह्मण दुष्टों ने कहा, दुष्ट वेशधारी साधु ने कहा कि अगर मैं आपसे गलत आचरण करें, दुष्ट व्यवहार करें, तब भगवान श्री राम आके साक्षी देंगे, माने हमको कष्ट पहुंचाएगा। कौन देगा? भगवान श्री राम मुझे शास्ति देगा। तो प्रश्न ने कहा कि ये प्रभु का नाम लिया, आप इसके बात पर चलिए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु का नाम लिया। तो ब्राह्मण ने अपने पत्नी की कथा के अनुसार चले दुष्टों के साथ। कुछ दूर जाने के बाद और दुष्टों ने क्या किया, ब्राह्मण को बिल्कुल गला दबा के मर दिया। हाँ, और पत्नी को भी जो चोटी से घसटते ही ले जा रहा था, तो बार बार पीछे की ओर देख रही थी पत्नी ने, पीछे की ओर देख रही थी कि तो दुष्टों ने पूछा इससे, ब्राह्मण पत्नी से, अब किसकी ओर देख रही, तेरा पति तो मर गया। तो पत्नी ने कहा कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग कहे थे कि जी भगवान श्री राम जी आकर हम मुझे कोई गलत आचरण करे शास्ति देंगे हम लोग को। मैं उस प्रभु की ओर देख रहे थे कि प्रभु कहाँ है आज। तो भगवान श्री राम वहां प्रकट हो गए उस बात पर कि विश्वास है कि प्रभु श्री राम का नाम लिया, अतः निश्चित प्रभु श्री राम आकर साक्षी देंगे। इस प्रकार से जब हम विश्वास करके चलेंगे, नहीं प्रभु के नाम सर्वोपरि है और कुछ करना नहीं। हम लोग सोचते बड़ा बड़ा व्रत तप करने से बहुत बड़ा फल मिलेगा, ए नहीं, कलयुग में सिर्फ नाम, जितना अधिक से अधिक संख्या नाम जप किया जाए उतना ही ज्यादा फल है। कम श्रम है, कम कुछ खर्चा पाती नहीं है बिल्कुल, और अधिक फल है। हाँ, तो संबंध लेकर भजन करना है, संबंध से नहीं, प्रभु मेरा संबंध है। एक बार मैथिली देश में, मैथिली जानते जनकपुर मैथिली में आता है, एक घटना सत्य है। तो जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, भजन करते, भगवान श्री राम के भक्त थे, क्योंकि वहां से अवधपुरी ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां भजन, वो दोनों पत्नी भजन करते, किंतु कोई संतान नहीं था, बिल्कुल निसंतान थे। तो लोग एक बार आए प्रयाग में, धर्म अर्थ काम मोक्ष का, कोई अगर कुछ दिन रहे, 20-25 दिन 30 दिन भजन करे, नाम जप करे, तो उनकी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो कुछ दिन रहे तो प्रयागराज से कहेंगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक संतान की लालसा है। हाँ, तो जब वो आए इस प्रार्थना करके घर पर आए, तो घर पर आते ही उनका कुछ दिनों के बाद एक संतान है। तो संतान के बाद क्या हुआ, उसका पिता मर गया, तो गांव के लोग सब बोलने लगे, ये जो संतान का जन्म हुआ एक कुलांगार है, ये अलक्षण है, इसमें कोई सत लक्षण नहीं, क्योंकि इनका जन्म होते ही इनका पिता मर गया। तो कहे कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ, जब पूरा संपत्ति में आग लग गया, पूरा घर आग लग गया, पूरा बिल्कुल गरीब हो गए, माँ ने क्या के बच्चा को लेकर मैंने एकदम बाहर आ गया, कुछ नहीं है, खाने पीने कुछ नहीं, शुद्ध बाहर से भिक्षा करके जीवन निर्वाह करता था। बहुत ऐसे ऐसे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों के बाद वो चार पांच, अच्छा वो लड़का का नाम था प्रयाग दत्त, जिससे प्रयाग से प्राप्त किया इसलिए उनका नाम पड़ गया प्रयाग दत्त। तो कहे कि ठीक है, तो एक दिन 4-5 वर्ष के बालक कहे, माँ मेरी दीदी कहाँ, मेरी दीदी कहाँ। तो माँ ने सोचने के अभी पति देव नहीं, पुत्री कोई आशा भी नहीं है। तो कहे कि ठीक है बेटा, तेरी दीदी की शादी हो गई। हाँ, शादी, बड़े दीदी है, शादी करा दिया, मतलब अभी यहाँ नहीं है, तो मैं इस दीदी से मिलना चाहता हूँ। बेटा छोटी अवस्था है, कम वयस है, जब बड़ा हो जाएंगे तेरी दीदी से मिला देंगे। हाँ, नहीं नहीं माँ। तो कुछ दिन 4-5 दिन के बाद कहेंगे, नहीं मुझे दीदी से मिलना है, मुझे दीदी से मिलना है। दीदी कहाँ रहती है? ना अवधपुरी में। प्रिया जी उनका नाम है, उनका पति का नाम है रामजीव, और रामजीव का पिता का नाम है दशरथ जीव, और दशरथ जीव का और मतलब उनका मामी का नाम है, मतलब राम जी का माँ का नाम है कौशल्या जी, ऐसे पूरा बता दिया। किंतु कोई जाने का साधन नहीं है, कैसे जाए? कुछ दिनों के बाद उसी क्षेत्र में एक परिवार मतलब अवधपुरी जाने के लिए सोच रहे थे। तो माँ ने देखा बेटा बहुत देखने की लालसा है, चलो एक बार जाके देख कर आए। हाँ, तो उस लड़का को माँ ने क्या किया, उस लड़का को उस परिवार के साथ, जो हमारे साथ दो तीन बच्चा है और एक छोटी सी बच्चा जाएंगे तो क्या है, देख लेंगे। तो छोटी सी बच्चा को लेकर साथ में कहाँ जा रहे हैं? अवधपुरी। अवधपुरी में जाकर सबसे पूछने लगे, मेरी दीदी यहाँ रहती है, मेरी दीदी का नाम प्रियाजीव और इनका जीजाजी का नाम रामजीव, राम जी का पिता का नाम दशरथ जीव, राम जी का मामी का नाम कौशल्या जीव। सबसे पूछने लगे तो कनक भवन की ओर दिखा दिया, वो कनक भवन है वहां पे है। तो वहां जाकर देखे तो पुतुल है, कुछ बात तो करता नहीं है। हाँ, ये तो डेटी है, मतलब कुछ बात वगैरह कुछ नहीं करते हैं, ये कैसे हम विश्वास करें मेरी दीदी है? नहीं नहीं यहाँ नहीं, ये ठीक से नहीं बताया। फिर और किसी से पूछे, जे मेरी दीदी यहाँ शादी है, शादी की गई है, तो दीदी कहाँ रहती है? दीदी का परिचय पूछा, ना ये दीदी यही नाम है, जीजाजी का नाम है, जे पापा का नाम है। वो चारों तरफ जितना अवधपुरी में अयोध्या में जितना मंदिर था सब में गया, कोई बात नहीं, कहीं भी उनका बात नहीं हुई, मतलब ठीक से संपर्क नहीं हो पाया। सब लोग सोचे कि नहीं मुझे सब गलत बता रहे हैं, ये लोग ठीक से जानते नहीं। फिर एक किनारे में जाकर रोने लगे, मेरी माँ मुझे कभी नहीं झूठ बोल सकती है, वो मुझे बोला था कि तेरी दीदी की शादी हुई अवधपुरी में। हाँ, ये तो कोई ठीक से नहीं बोल पा। तो फिर बहुत समय रोने के बाद उनका एक आवाज सुनाई दिया, भगवान श्री रामचंद्र की, प्रियाजी की, ऐसे एक सुंदर झांकी का दर्शन, मतलब एक सुंदर साउंड काने आने लगे। फिर जब आँख खोले देखे, हाँ बहुत सुंदर झांकी, हाँ राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, भरत जी है, बहुत सुंदर एक सुंदर झांकी का दर्शन हुआ। तो फिर जब दर्शन करने जा रहे तो मेरा कान को तो संबंध देखे, संबंध जब बहुत बड़ा विस्तार है, तो संबंध से उनका झांकी का दर्शन हुआ। फिर जब झांकी का दर्शन हुआ तो फिर एक जगह नदी के किनारे में सो गया था, मतलब बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, तो झांकी का दर्शन किया। फिर जब एक त्रिलोचन नाम के एक साधु जा रहे थे, सरजू नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, देखे बच्चा पड़ा हुआ है, तो बच्चा का जगह आया, बच्चा क्या किस लिए यहाँ सोए है? ना मेरे दीदी का परिचय दिया, मेरी दीदी है प्रियाजी, वो कहाँ गई चली गई, देख नहीं पा रहे, रोने लगे। हाँ, तो देखे ये तो भाव दशा में है, बिल्कुल सही दशा में है। तो उठा के लेकर आया तो उनको सुंदर प्रसाद पाया, बहुत सुंदर से उनका सेवा किया। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि संबंध से भगवान रिझते हैं, संबंध बनाना पड़ेगा, नहीं प्रभु का संबंध, देखिए बच्चा का संबंध, वो पुतुल है, वो डेडी है, कैसे मुझे बात करेगा? तो इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था, इतने लोग ठीक से नहीं बता रहे थे। तो जाके किनारे में जाकर रोए, नहीं मेरे दीदी प्रियाजी है, जीजाजी रामजी है, साक्षात है, ऐसे नहीं है, मेरी माँ कोई झूठ नहीं बोल सकती। फिर जब झांकी का दर्शन हुआ ना उस समय, और सीता जी उससे बिल्कुल बहुत प्रेम करने लगे, और जब आ रहे थे, जब प्रयाग दत्त जब मिलने के लिए गए थे, माँ ने कुछ ऐसे चावल का आटा का गुड़ मिलाकर लाड्डू बना दिया था, चार पांच लाड्डू मतलब कपड़ा में बांध दिया था। फिर सीता जी पूछने लगे, माँ ने जो दिया था वो कहा, माँ ने जो लाड्डू दिया था वो कहा? प्रयाग दत्त से कहे, हाँ वो तो मैंने भूल गया था, वो तो यही पे है, तो खुल के दिया। फिर सीता जी ने राम जी को दिखाया, बोले ये बहुत कभी कभी मिलता है, सब दिन नहीं मिलता है, एक कभी सबरी किसे मिला कभी इधर मिला, मतलब बहुत रेयर मिलता है ऐसी चीज। बहुत ऐसे तो मैं हमेशा बहुत कुछ पाता हूँ, किंतु ये जो प्रेम का जो द्रव्य है बहुत भाग्य से मिलता है। मेरा कहने का उद्देश्य है कि संबंध, जैसे पृथ्वी महाराज जी चरित्र जब हम सुनते हैं, एक गृहस्थ भक्तों के लिए, कोई भी भक्तों के लिए किस प्रकार से उनका चरित्र सुनने से भक्त बन जाएगा। देखिए उनका जीवन में एक एक मतलब स्टेज का वर्णन है, गृहस्थ का जीवन कैसे बिताया, जैसे 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 अकामी अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार थी तीव्रेना भुक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। इसे शिल प्रभुपाद श्लोक का कोट किया। जैसे उदारधि, उदारधि के शब्द का व्याख्या करते हैं व्यापक दृष्टि वाले, जैसे कर्मकांडी लोग देव देवी को उपासना करते हैं, किस लिए करते हैं कि मुझे कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, है कि नहीं। जो कर्मकांडी लोग हैं देव देवी को उपासना किस लिए करते हैं, कुछ धन की प्राप्ति। देव देवी को देने की सामर्थ्य नहीं है, देव देवी किससे लेते, प्रभु से लेकर देते हैं। उदारधि वो है जो देव देवी पास नहीं जाते, सीधा प्रभु से भजन करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ेगा उदारधि। उदारधि मतलब वो भया से नहीं जाते, डायरेक्ट प्रभु से भजन करते हैं। तो इसलिए प्रभु का नाम चिंतन बहुत जरूरी है। और एक पृथु चरित्र में निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए धन्यम जसस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमलापहम। हाँ, कोली युग में देखिए चरित्र तो पढ़ना चाहिए, विशेष लालसा दिखाएगा, लोभ दिखाएगा, तुम इसको पढ़ो। किंतु भक्त जब, जैसे हम हमारे संस्था में भी जो लोग भक्त बनने के लिए आते ना, पहले ऐश्वर्य देखते हैं, नहीं यहाँ जान से ऐश्वर्य मिलेगा मुझे, भोग भोगने का बहुत वस्तु सामग्री मिलेगी। तो इस लालसा साथ है, जब भजन करने लगते ये इच्छा छूट जाती है। तो इसलिए किसी प्रकार से आओ भजन करो, धीरे धीरे से वो शुद्ध बन जाएगा। तो इसीलिए जब हम प्रचार करते हम लोग को, लोगों को इस तरह बात करनी चाहिए कि नहीं तुम किसी प्रकार से भजन करो, जहां पे रहो। प्रभुपाद जी कभी चार नियम का पहले नहीं बोलते थे, धीरे से हरि नाम करो, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। कहने का ये है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत अवश्यम शतसंधि जर्जरम। ये शरीर नाशवान है, किसी समय शरीर का नाश हो जाएगा। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत अवश्यम शतसंधि जर्जरम। समय से ये शरीर रोगाग्रस्त होने जा रहे हैं। और किमो सधम पृच्छसे मूढ़ दुर्मते, किस औषध का तुम पूछते माने ये करते हो, इससे निरामयम कृष्ण रसायनम पिबो, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबो। किमो सधम पृच्छसे मूढ़ दुर्मते, किस औषध की तुम पूछते हो, ये मनुष्य शरीर का यथार्थ औषध क्या है, कृष्ण रसायनम पिबो, कृष्ण रस का निरंतर पान करो। देखिए मेरा एक एक कई दिन से एक मतलब अनुभव, तो अनुभव बोला जा सकते हैं क्योंकि अनुभव जो अनुभव में आता है, जो बुढ़ापा का अवस्था है ना बहुत शोचनीय है। मैंने उस समय आप पानी पी नहीं सकते, हाथ से उठा नहीं सकते, आंख नहीं देखेंगे, कान नहीं सुनेगा, परिवार के कोई लोग सहायता नहीं करेगा, बिल्कुल असहाय अवस्था। तो इस अवस्था में आप बहुत मतलब बहुत अच्छा से जी सकते, कैसे जिएंगे, अगर बचपन के अवस्था में खूब अच्छा से भजन करें, आपको संसार फीका लगेगा, नहीं संसार में कोई मेरा नहीं है, कोई आपन अपनापन कोई कुछ नहीं है, यह शुद्ध केवल भगवान का भजन करने से। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है ब्रह्मचर्य का पालन, भले गृहस्थ हो और विरक्त हो इसका कोई मतलब है, भले विरक्त होकर जिसका निरंतर कृष्ण राधा श्याम सुंदर में मन लगन लग चुका है, वो नमन के यज्ञ है, वो प्रणाम के यज्ञ है, कोटि सह प्रणाम के यज्ञ है, और विरक्त होकर भगवान में मन नहीं है वो कोई बात नहीं है, वो विरक्त एक भेष मात्र, उस भेष का कोई कीमत नहीं है। विरक्त और गृहस्थ में कोई फर्क नहीं, जिसका मन भगवान में लग चुका है वो है महान। तो इसके लिए आपको हटाना पड़ेगा जो अमित अपनापन है, जो संसार में जो राग है, संसार में जो राग है, ये राग को हटाना और भगवान में मन को जोड़ना। ऐसी स्कंद में जहां सुमत कुमार ने आत्मा ने व्यतिरिक्त आत्मा ने रतिर ब्रह्म ने दृढ़ा भगवती, भगवान में दृढ़ रति हो और संसार में वैराग्य हो। हाँ, तो ये होगा कैसे? जैसे अमित कर लिया संसार भोगों में, अमित मेरापन इसको हटाना, कैसे हटाएंगे? संयम चाहिए, संयम सदाचार ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या लाभ है? मैं आपको सबके लिए, गृहस्थ ब्रह्मचारी कोई इसमें ये नहीं है, कोई गृहस्थ भी हो वो भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं, जो ब्रह्मचारी उसको तो पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य पालन से उसका प्राणवायु सूक्ष्म होते जाएगा, प्राणवायु सूक्ष्म होते जाएगा। ब्रह्मचर्य पालन नहीं करने से उसका प्राणवायु स्थूल हो जाएगा, और प्राणवायु जब स्थूल होगा उसका जो शरीर छूटेगा मल मूत्र से, उसका शरीर पूरा होगा, मल मूत्र के द्वारा उनका प्राणवायु निकलेगा। मैंने बहुत कठिन अवस्था, मतलब उनका शरीर से जीना भारी कठिन पड़ जाएगा। मतलब कहने का उद्देश्य है प्राणवायु सूक्ष्म होगा कैसे, प्रश्न होता है। प्राणवायु में जो सूक्ष्म करना चाहते हैं इसके लिए कम भोजन और अधिक भजन, उसका प्राणवायु सूक्ष्म हो जाएगा। किंतु हम लोग उल्टा अधिक तीन बार चार बार प्रसाद पाएंगे, भजन के समय कम करेंगे, ऐसे नहीं। खूब जैसे मैं देखा बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष ने शिक्षा, इससे शरीर भी ठीक रहते, कम भोजन अधिक भजन। क्योंकि इसमें यदि अगर आप साइंटिफिक माने डॉक्टर हिसाब से देखें, जो प्राण जो अंदर का जो वायु है ना, ये वायु निकल जाते एक सांस में, दो बार तीन बार हरिनाम करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे एक सांस में कम से कम दो बार लिया करें, तो बादशाह खाने के बाद दो बार नहीं ले सकते। अब प्रसाद पाले उसके बाद दो बार तीन बार नहीं ले सकते, खाली पेट में भजन होता है। कोई कोई कहते भूखे नहाए भजन नंदलाला गोपाला, एक बात सत्य नहीं है, सत्य ये है भूखे से ही भजन होता है, भरपेट से भजन नहीं होता है। ये हमारा विचार है, पता नहीं किसका क्या मत है। भूख से ही भजन होता है, भरपेट से भजन नहीं होता है, उसमें नींद आती है, आलस्य आता है, भूख से नींद नहीं आती है। अगर ज्यादा चिकनापन आहार करें उसमें भी नींद आती है, झपटी आता है। अच्छा, रोज हलवा पूरी और माखन मालाई खाते रहे और जब किसान जिंदगी भर ऐसे करते रहेगा, झपटी मारते रहेगा, कभी जब ठीक से नहीं करता है। आज सूखा रोटी नमक मिर्ची मसाला देकर खाए वो जिंदगी भर उसका नींद नहीं आएगा। छह महीना करके देखिए ना, सीधा हो जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए खान पान वास्तविक सरल हो, कम से कम हमारा लाभ को देखना है। जैसे किसी को आपको गाड़ी दिया गया कि आप अपना लक्ष्य पूरा कर ले, अपना गाड़ी दिया गया कि अपना लक्ष्य पूरा कर ले, है ना। इसी प्रकार भगवान ने गाड़ी दिया कि अपना लक्ष्य पूरा कर लो, लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति कर लो। तो इसीलिए एक गाड़ी मिला है, एक गाड़ी से यथार्थ तो उपयोग करना चाहिए। नहीं, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, संसार की वस्तुओं में चिपकना नहीं, थोड़ा सा देख कर तुरंत उससे भाग जाए। नहीं, एक दिन एक कहानी लास्ट टाइम बोला था ना, एक छोटा सा, कि एक बार एक राजा ने एक किया था, एक राजा ने देखे कि हमारे सब प्रजा बहुत दुखी है। राजा ने देखा हमारे सब प्रजा दुखी है, तो प्रजा के दुख निवारण के लिए उन्होंने एक मनोरम बागीचा बनाया। क्या बनाया? मनोरम बागीचा। बागीचा बनाने के बाद उन्होंने अनाउंस किया, ऐलान कर दिया नगर वासियों को कि इसमें सबको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, जो घूमकर देखकर मेरे पास आ जाएंगे, मैं उनका हमारे समान सुख प्रदान करेंगे। ठीक, हमारे समान सुख प्रदान करेंगे। तो सब लोग आते, टाइम दिया गया, जो 10 बजे आया तो 12 बजे तक, 12:30 आए तो 12:30 तक, इस तरह टाइम सब, मतलब ये है सिक्योरिटी, सिपाही बहुत कड़ा सिक्योरिटी है। तो जब आए, ठीक है दिया गया, फिर
फिर जो लोग जाते हैं अंदर जाते हैं वस्तु में चिपक जाते हैं, खाने पीने रहने सब फ्री की व्यवस्था है, हाँ सब लोग देखते देखते देख जाते हैं, हाँ कुछ खाना पीना मिला उसी में रम जाते हैं, किसी समय खोते किसी का ध्यान नहीं है, सबका ध्यान है कि अच्छा अच्छा वस्तु मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, हाँ बहुत अच्छा सा भव भव, अच्छा सा संगीत हो रहा है, अच्छा सा गाना हो रही है, सुनो उसी में चिपक गया। फिर एक व्यक्ति ने देखा सुना विचार किया राजा पहले क्यों नहीं बताया, हाँ जे हमसे मिलकर घूम कर ऐसे नहीं क्यों बताया, निश्चित से कुछ कारण है। तो देखे कि अरे जो लोग जाते बागीचा में देखने में ले जाते सो उसमें जाकर लोग चिपक जाता है, उसमें लोग आकृष्ट हो जाते हैं, नहीं मुझे चिपकना नहीं, इसमें आकृष्ट नहीं होना, इसमें रहना नहीं, इसको देखकर तुरंत 2 घंटा से पहले निकल गया, राजा से मिले, राजा सुंदर आसन रखा था उसमें आसन में बैठाया, बैठा के कहे तुम बैठो। आज जो लोग ऐसे चिपक जाते ना उसको बहुत पिटाई करते हैं। इसी प्रकार जन्म मरण के जो बीच का जो 2 घंटा है, ये 2 घंटा टाइम है आयु, ये आयु मुझे दिया गया, तुम इस समय से तुम्हारी यात्रा पूरी कर लो, हाँ तो इसीलिए हम लोग को रुकना नहीं। जिसकी चित्त वृत्ति जिसकी इंद्रिया वृत्ति में भोगों में बांट गया वो साधक लुट जाएगा, वो साधक का कोई मतलब बिल्कुल हल्कापन हो जाएगा। इसलिए वृत्ति को हमें संभाल कर रखना चाहिए, नहीं मेरे आंख जो है भगवान का रूप दर्शन करें, कान जो है भगवान की कथा श्रवण करें, जीवा है भगवान की कथा कहने के लिए सुनने के लिए बोलने के लिए, इस प्रकार से चलना चाहिए, तब जाके मनुष्य की यात्रा सफलता मिलेगी। तो निश्वास नैव विश्वास, निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्य से, निश्वास का कोई विश्वास नहीं कब रुद्ध हो जाए कब बंद हो जाए, कदा रुद्ध भविष्य से कीर्तनम अतो बाल्यासो, अतः हे बालकगण कीर्तनम अतो बाल्यासो कीर्तन करो, प्रभु का नाम जस गाओ, कीर्तनम अतो बाल्यासो हरि नामैव केवलम, एक केवल अष्टम का श्लोक है, इसको पढ़िए बहुत सुंदर नाम महिमा का श्लोक है वहां, हाँ निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्य से, निश्वास का कोई विश्वास नहीं कब रुद्ध हो जाए कब बंद हो जाएगा, अत कीर्तनम अत बाल्यासो बाल्यावस्था से भगवान का नाम कीर्तन करो, हरि नामैव केवलम एकमात्र प्रभु का नाम ही सहारा है और कुछ सहारा नहीं। संसार जो देख रहे हैं ये केवल एक धोखे का संसार है, धोखेबाजी है, सब सब किसी से कोई प्रेम नहीं है, शुद्ध क्षण भर का संबंध है, सब कोई इधर उधर छिटे मतलब छिन्न भिन्न हो जाएगा। जो वही असली बुद्धिमान है जो प्रभु का नाम का सहारा लेंगे, पति पत्नी रहे खूब संयम से ब्रह्मचर्य से एकदम दृढ़ता से भजन करें, यही जीवन की सफलता है। तो प्राण वायु सूक्ष्म हो जाती है किससे, ब्रह्मचर्य पालन से, उसका जब शरीर छूटता है तो वहां ब्रह्म अंदर से प्राण वायु निकलता है जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन वास्तविक बहुत, और इसमें बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है, स्मरण भी होता है, भजन भी होता है, सब कुछ लाभ होता है। तो इसका कभी हल्कापन से ना ले, बहुत दृढ़ता से ले, नहीं मुझे भजन करना है, जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है, इस जीवन मिला केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, और किसी के सुख भोग तो किसी भी जन्म में प्राप्त होता है, ये मल मूत्र का शरीर किसी के प्रति आसक्त नहीं होना, चाहे स्त्री साधक पुरुष के स्त्री साधक पुरुष के प्रति आसक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं, कि मल मूत्र एक ढेबला है इसमें कुछ है ही नहीं, और पुरुष साधक भी ऐसे ही देखे तो धीरे से विरक्त जब आ जाएगा धीरे धीरे से प्रभु में मन लगेगा, एकमात्र प्रभु का रूप जब एक बार देख लेंगे संसार का रूप देखने की इच्छा नहीं करेगा, बिल्कुल जैसे लग रहा है इतना घृण्य वस्तु इसको मैं इतना दिन इससे समय बिताया, जैसे अगर 20 जैसे अच्छा खीर बनी है उसमें 20 मिलाया दे जाए वो कोई पिएगा, हाँ कोई बुद्धिमान पिएगा उसको, उसी प्रकार ये जो सुख रूप जो संसार भास रहे इसे विषय रूप 20 मिलावट है, सुख रूप संसार में विषय रूप 20 मिलावट है, जो बुद्धिमान है वो इसको नहीं पिएगा कभी, किंतु जो मूर्ख है जो मोहित है वो उसको पीकर मरेगा, किंतु भक्त हमेशा बुद्धिमान है कारण कि वो हरिनाम का आश्रय लिया है, इसलिए हरिनाम करे राजभर समय मिला प्रभु के भजन के लिए और कुछ चीज के लिए नहीं, हमेशा ध्यान रखे नहीं मुझे एक क्षण व्यर्थ जाने नहीं देंगे, बार बार इस प्रकार के वैराग्य का धारण करते भजन करें निश्चित श्याम सुंदर प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं मिलेगा? श्याम सुंदर दर्शन देने के लिए तैयार है, हम तैयार नहीं है। हम संसार सुख में रम गया, हमारा चित्त वृत्ति उससे फंस गया, उससे हटाकर उससे हटा दिए तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। किंतु हमेशा ध्यान रखे नहीं, मुझे संसार के सुख में रमना नहीं, प्रभु के सुख में रमना है, प्रभु के सौंदर्य देखना है। देखिए हमारा 40-50 की अवस्था चला गया, समय बेकार चला गया और समय मिलेगा नहीं। हाँ, समय और गया और मिलेगा नहीं। हाँ, आज तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, कितना दुख की बात है। इसको बार बार सोचना चाहिए, रोना चाहिए, अरे कहाँ चला गया, 10 साल बाचे ना बाचे कोई भरोसा नहीं। जितना टेररिस्ट दिखा रहे भाई, हाँ कभी भी जा सकते हैं। तो इसलिए सावधान हो जाए, नहीं शरीर को खोना नहीं। एदम शरीरम परिणाम पेशलम, नष्ट हो जाएगा। पतति अवश्यम सतसंधि जर्जरम, इस प्रकार से बार बार इस श्लोक का चिंतन करने से क्या होगा, संसार से वैराग्य होगा, हरिनाम में प्रीति बनेगा। शील प्रभुपाद की, सामेत भक्त बिंद की, शील गुरु वरांग की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
अच्छा उसको पीछे करिए, ओन ना, फ्यूज निकाल के फ्यूज चेंज करिए। तो